रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ और वक्त है बहुत सी बातें करने का आप ही की सेहत के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं आपकी मजबूत बोन्स यानी हड्डियों के बारे में। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी बोन्स को सही और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी मालिश की जाती है ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रह सकें। सही डाइट और उसका सही लाइफस्टाइल, सही तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज का होना उसकी बोन्स की ग्रोथ पर काफी निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनकी वजह से बोन्स हो जाती हैं वीक। हड्डियों की बीमारियों से जुड़ी हुई और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सुभाष शल्य, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
धन्यवाद।
सर सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, हम बात कर रहे हैं हड्डियों की और आप स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, तो बोन्स की देखभाल जैसे बच्चा छोटा होता है किस तरीके से करनी चाहिए कि हड्डियों की देखभाल सही तरीके से हो पाए?
देखिए हड्डियाँ की जो देखभाल है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जिस चीज़ से हड्डियाँ बनी होती हैं वो तत्व तो आपको पूरी मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हड्डियाँ बनने के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं, एक तो कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन, तीसरी विटामिन डी, जिससे कि उसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरी मात्रा में हो पाता है
जी।
तो आजकल क्या होता है कि बच्चे धूप में तो नहीं निकलते हैं तो उनको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाता है और कैल्शियम की जहाँ बात आती है तो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, पनीर खाना पसंद नहीं करते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं
जी जी,
ताजा जूस नहीं पसंद करते हैं तो कैल्शियम भी उनको नहीं मिल पाता है। प्रोटीन की बात है वो दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, मैगी पिज्जा बर्गर खाना पसंद करते हैं और जो पसंद करते हैं वो सबसे ज्यादा चीज है वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है और फॉस्फोरिक एसिड के अंदर एक बड़ी खास क्वालिटी होती है कि खाने के जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है उसको वहां से निकाल करके और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से जिसमें कैफीन होती है और तमाम फर्टिलाइजर्स भी मिले हुए होते हैं और तमाम एसिड होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, उनको लेने से और जंक फूड को लेने से हड्डियों की कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है
जी जी।
तो कोशिश करें बच्चों को जंक फूड की आदत ना डाली जाए। पहले बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती थी क्योंकि माँ घर पर बेसन के लड्डू बनाती थी, साग बनाती थी, मठरी बनाती थी, आटे के अंदर दाल डाली जाती थी, दाल की कड़ी रोजाना बनाई जाती थी, दाल रोजाना बनाई जाती थी। ना तो बच्चों को दाल पसंद है ना कड़ी पसंद है, उनको तो बस ब्रेड दे दी जाए उसके ऊपर उन्होंने बटर लगा लिया और उसके ऊपर एक सॉस लगा ली टमाटर सॉस और खाया और एक कप चाय पिया, एक फ्रूटी का डब्बा निकाला उसको खोला पी गया और स्कूल चले गए। खेलने के लिए समय नहीं है, बच्चे आते हैं स्कूल से आके डायरेक्ट कंप्यूटर पर लग जाते हैं, फेसबुक पर लग जाते हैं और तमाम इस तरह के जो कंप्यूटर की जो लग जाते हैं तो एक 10-15 साल की उम्र होती होती है उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं
जी जी।
और लड़कियां आजकल थोड़ा ट्रिम स्लिम रहने के चक्कर में वो जो एक्चुअल जो डाइट है वो नहीं लेती हैं तो उनकी हड्डियां भी बड़ी कमजोर होने लगती हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ रुक जाती है।
बिल्कुल, यानी सही डाइट ना लेना एक सबसे बड़ा कारण है जो वीकनेस आती है बोन्स।
नहीं, सही डाइट के साथ साथ तो अब डाइट अच्छी ले लीजिए उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं
तो
वो तो डेवलपमेंट नहीं। हड्डियों की जो मजबूती है वो मांसपेशियों से वाले तनाव के कारण आती है और मांसपेशियों पर तनाव जब तक उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ना हो, फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो मांसपेशियां हड्डियों पर जोर नहीं डालती हैं। और चूंकि जितनी भी मांसपेशियां उनका अटैचमेंट इंसर्शन ओरिजिन मसल हड्डियों के ऊपर ही होता है तो मांसपेशियों की एक्टिविटी जो फिजिकल एक्सरसाइज से संभव है वो होना और अच्छी डाइट का होना और जो नेगेटिव अफेक्ट डालते हैं वो जंक फूड कोल्ड ड्रिंक उनका ना होना, ये तीनों चीजें ही बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, यानी आपकी सही बोन्स की देखभाल के लिए और उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए सही डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सुभाष बहुत सी बातें हम आपसे जान रहे हैं, अभी फिलहाल आपने बताया कि बच्चों का जो आजकल का लाइफस्टाइल है, उनका खाने पीने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से उनकी हड्डियों को कमजोर बनाता जा रहा है, उनके शरीर को कमजोर बनाता जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत देखभाल के बाद भी बच्चे की सही मालिश भी की जाती है और उसे सही डाइट भी दी जाती है लेकिन फिर भी बच्चों की जो हड्डियों की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती, अलग अलग किस्म की बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, तो इसका क्या कारण है और क्या इसका कोई इलाज भी होता है?
जी देखिए, एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स कहते हैं
जी।
तो रिकेट्स आमतौर पर जो अधिकांश बच्चों पाई जाती है कि बच्चों के जो मैंने जो डाइट पहले बताई कि उसको अच्छी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रही, तो हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं हार्ड होने की बजाय और हड्डियों बेंट हो जाती हैं। तो बेंट होने से हड्डियों मुड़ जाती हैं और उनकी प्रॉपर लंबाई नहीं निकल पाती, तो उसके लिए हम विटामिन डी लेवल का एस्टिमेशन कराते हैं, ब्लड का विटामिन डी कितना है उसका एस्टिमेशन कराते हैं, सीरम कैल्शियम कराते हैं, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज कराते हैं, दो तीन टेस्ट कराते हैं, तो उसे बेटा उसका हमें रिकेट्स का कारण पता लग जाता है। कुछ तो अगर वो लेवल कम है तो उनके इंजेक्शन्स आते हैं, दूध में घुलने वाली दवाएं आती हैं, खाने वाली दवाएं आ गई, पीने वाले सिरप आ गए बच्चे के टेस्ट के अनुसार, क्योंकि बच्चों को दवाएं देना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो जो बच्चा जो पसंद का उसके अनुसार उसको चीज़ें दी जाती हैं और उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं तो कुछ खास तरह की 3 पॉइंट प्रेशर स्प्लिंट आती हैं उनको भी देते हैं तो हड्डियाँ सीधी हो जाती हैं, प्रॉपर ग्रोथ होने लगती है। आजकल दवाएँ बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। ज़रूरत है ईमानदारी से एक सही डॉक्टर के पास जाके सही इन्वेस्टिगेशन करा के उन दवाओं को प्रयोग करने की, और करीब 3 से 6 महीने बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, पता लगाना, डायग्नोसिस करना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बहुत जरूरी
होता है। जी, यानी सही एक जड़ जो होती है बीमारी की उसे पता लगाना बहुत जरूरी है।
इन्वेस्टिगेशन जरूर होने चाहिए और एक अच्छी लेपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, किसी छोटी लेपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि छोटी लेपर वो उपकरण नहीं होते को सही टेस्ट की रिपोर्ट दे सके। एक अच्छी लेपर जो रिनाउंड लैब हो वहाँ टेस्ट कराएं और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर पर जाकर के प्रॉपर मेडिसिन लें अच्छी कंपनी की बनी हुई, तो 3 से 6 महीने में हड्डी की गंभीर से गंभीर बीमारियां कंट्रोल में आ जाती है।
जी बिल्कुल, जहाँ पर हम बीमारियों की बात करें तो वहाँ पर एक परेशानी बच्चों में देखा गया है कि उनकी जो हाइट है, उनकी जो लंबाई है, वो कई बार नहीं बढ़ती है। बच्चा जो है वो कई बार तो जेनेटिक होता है कि माता पिता की हाइट थोड़ी कम है तो बच्चे की उतनी रह जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे की माता पिता की भी हाइट ठीक है लेकिन उनकी हाइट जो है वो उतनी नहीं बढ़ पाई है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जाए?
देखिए, आमतौर पर जो हमारी हाइट के लिए जिम्मेदार है, एक तो मैंने तो डाइट बता दी, क्योंकि स्केलेटन की हाइट जो होती है स्केलेटन के लिए मिलने वाले भोजन तत्वों पर निर्भर करती है। यदि माँ ने गर्भकाल के अंदर कैल्शियम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया, प्रॉपर मात्रा में आयरन नहीं लिया है, तो बच्चे की जो इनिशियल बर्थ वेट है वो 2.5 किलो से कम है, 1 किलो, 1.25 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का, तो अल्टीमेट हाइट कम जाएगी। और बच्चे को जो माँ स्तन पान कराती है वो पूरा 1 साल तक करा रही है नहीं करे, 6 महीने से 1 साल तक करा रही नहीं करे, उस पर डिपेंड करता है। फिर वो कितनी जल्दी स्तन पान पाना बंद करा करके ऊपर की डाइट देना शुरू करती है, उस डाइट कितनी प्रोटीन और कैल्शियम रिच है उस पर डिपेंड करता है। किन्हीं बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है जो लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चे की लंबाई कम हो जाती है। एक बीमारी बड़ी खास बीमारी होती है, जैसे आपने सर्कस के जोकर देखे होंगे जो 4, 3.5 और 4 फुट के होते हैं, उसको एक कोंड्रोप्लीजिया कहते हैं। तो उसमें बच्चे की हाइट कम हो जाती है, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, धड़ तो उतने ही रहते लेकिन हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसमें कोई दवा काम नहीं करती है, लंबाई बढ़ाने वाला ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको इलिजारोव टेक्निक कहते हैं। रूसी साइंटिस्ट थे एक डॉक्टर जिन्होंने पद्धति बनाई थी। मैं इस तरह के करीब 5,000 ऑपरेशन कर चुका हूँ लंबाई बढ़ाने का, और इसमें आराम से आप 20 इंच तक लंबाई बढ़ा सकते हैं।
जी, यानी
1.5 फुट से ज्यादा, 1.5 फुट से ज्यादा लंबाई ऑपरेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं।
जी,
और बड़ी सिंपल टेक्निक है, जैसे कार के नीचे जैक लाके कार को ऊपर उठाते हैं, इसी तरह का जैक बना हुआ आता है प्लास्टिक स्टील का बना हुआ, उसको टांगों में फिट कर देते हैं और उससे हर महीने 1 इंच की दर से लंबाई बढ़ाई जा सकती है। वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई कठिन नहीं है।
जी,
हाँ, वो मशीन थोड़ी महंगी जरूर आती है लेकिन प्रोसीजर बहुत सिंपल है।
जी जी, इतना खास एक प्रोसीजर के बारे में आपने बताया, मैं यहीं से आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते होंगे और खास तौर पर से जब शादी की उम्र होती है या कॉलेज जाते हैं बच्चे, तो ये उनमें हीन भावना रहती है कि हमारी हाइट की वजह से लोग हमें चढ़ाते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपने प्रोसेस बताया है, मैं जानना चाहूंगी आपसे इसका खर्चा कितने तक का आ सकता है?
बस ये एक मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली इसका जो फ्रेम आता है वो एक टांग का 50,000 से लेकर के 75,000 रुपए का जो फ्रेम है, लिजारो फ्रेम वो आता है, और दोनों टांगों का मिला के करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का फ्रेम पड़ता है। करीब 50,000 रुपये सर्जन की और असिस्टेंट की फीस होती है और 50,000 रुपये हॉस्पिटल का खर्चा आता है। तो इस तरह से लगभग 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है, पर 2.5 लाख रुपये के अंदर आप लगभग 12 इंच तक लंबाई बढ़ा सकते हैं।
जी जी,
पर दर वही रहती है, 1 महीने में 1 इंच लंबाई बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।
जी, यानी 1-1.5 साल के अंदर आपकी हाइट,
1-1.5 साल के अंदर आपकी हाइट जितना चाहते हैं। यूजली जो रिक्वायरमेंट होती है कि साहब हमारी लड़की 5 फुट की है, 5 फुट 4 इंच का होना है, तो 4 इंच लंबाई के लिए 4 महीने लगते हैं, तो इतना तो किया जा सकता है।
जी,
और इसमें कोई खास दवाओं का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, मैकेनिकल प्रोसेस। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर डाइट, जो माँ गर्भवती होने पर खाना खाती है, जैसे एक्स्ट्रा दूध लेना, एक्स्ट्रा दाल लेना, कैल्शियम प्रोटीन वाली डाइट, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिन में थोड़ा दही दाल एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, बाकी कोई इसमें दवा की आवश्यकता नहीं।
जी जी, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्या ये जो प्रोसेस है आपने बताया, इस प्रोसेस के बाद क्या हाइट हमेशा के लिए बढ़ती है, या जैसे एक साल के लिए आपने बताया बढ़ रही है, तो क्या आगे जाकर कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है?
जी नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हाइट बढ़ा दी जाती है वो परमानेंट होती है। आपने किसी 5 फुट की लड़की के लिए प्रोसेस पर अप्लाई की, तो अगर उसकी 5 फुट चेंज कर दी तो 5 फुट चेंज पूरी जिंदगी रहेगी। ये तो उसकी टांगों की लंबाई को आपने बढ़ा दिया है, और उसको हाइट बढ़ने के बाद फ्रेम को निकाल दिया जाता है, उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
जी जी, यानी हाइट बढ़ने के बाद उस फ्रेम को निकाल लिया जाता है और परमानेंटली हाइट जो है वो बड़ी हुई हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मैं चीज बताऊं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पोलियो के द्वारा पैर छोटा हो जाता है, 1 इंच या 2 इंच, या किसी का किसी दुर्घटना के अंदर 3 इंच हड्डी का टुकड़ा निकल के वही साइड पे छूट गया, टांग 3 इंच छोटी हो गई, या किसी टांगें एकदम बचपन से टेढ़ी पैदा होती हैं, पैर टेढ़े पैदा होते हैं, या किसी को कैंसर है, कैंसर के अंदर आपने 3 इंच हड्डी उसकी निकाल दी तो टांग 3 इंच या बाहर 3 इंच छोटी हो गई, उन सबको इस प्रोसेस के द्वारा सामान्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कितने भी पैर टेढ़े हों, लोग कहते हैं भूतों के पैर पीछे की तरफ होते थे, उस तरह के भी पैर हों, कुछ बच्चे टेढ़े पैरों वाले पैदा होते हैं, उनको भी इस टेक्निक के द्वारा बिल्कुल 2 से 3 महीने में 100% ठीक किया जा सकता है।
जी जी, यानी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस ने, और इस फील्ड में जैसे आपने जो चीजें आज बताई हैं, इनसे बहुत सारे लोगों की तकलीफें दूर हो सकती हैं।
जी, ये इलिजारोप टेक्निक है जिसका कि मैं एक्सपर्ट हूँ। इस टेक्निक के द्वारा पूरे विश्व के अंदर अभी तक करीब करीब 10 करोड़ व्यक्तियों के टांगों और हाथों को ठीक किया जा चुका है, जिनकी की पहले कहा जाता या तो हाथ पैर काट के निकाल दीजिए या ऐसे ही जिंदगी भर रही है, उन सब कुछ टेक्निक के द्वारा ठीक किया जा सकता है।
जी जी,
वंडरफुल टेक्निक है, और यदि दुनिया में कहा जाए कोई चमत्कार कोई चीजों का आविष्कार हुआ है तो इस टेक्निक का नाम उन चीजों में आता है। इसने हड्डी जोड़ों से प्रभावित लोगों की जिंदगी एकदम बदल दी है।
बिल्कुल, यानी बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों को जो बोन से रिलेटेड होती हैं, और उसके लिए आपने अलग अलग टेक्निक्स बताई हैं जो कि काफी सफल रह रही हैं।
100% सक्सेस रेट है इसकी, यदि मरीज सपोर्ट करता है, डॉक्टर की बताई बातें मानता है, तो 100% इसके अंदर रिजल्ट आते हैं।
बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और आप है मेरे यानी दीक्षा के साथ। बातें चल रही कुछ खास आप ही की सेहत के बारे में, और आज बातें चल रही हैं आपकी मजबूत बोन्स यानी हड्डियों के बारे में। बहुत सी बातें करने के लिए हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष शल्य, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। डॉक्टर सुभाष, अब बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में। बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो चुके हैं, घुटनों में दर्द होता है लोगों के, पहले बहुत परेशान रहते थे अर्थराइटिस की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, लोग बहुत परेशान रहते थे, कभी बैक में तकलीफ होती थी, कभी नेक में तकलीफ होती थी, कभी शोल्डर में एक्सीडेंट हो गया या फिर घुटनों में कोई तकलीफ आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास उस समय इलाज नहीं होता था, लेकिन आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं।
जी,
मैं आपसे जानना चाहूंगी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअली में है क्या, और साथ ही ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहा है।
देखिए, ऐसा है कि जब जोड़ की जो एंड होते हैं, दो हड्डियों के एंड को मिलाकर के एक जोड़ बनता है, उसके बीच में कार्टिलेज होती है जो दोनों जो हड्डियों के किनारों को आपस में टकराने से रोकती है, कोई कुशनिंग का इफेक्ट होता है उसके अंदर से, किसी वजह से वो कार्टिलेज डैमेज हो जाए, फट जाए या टूट जाए किसी एक्सीडेंट, या तो उम्र के साथ साथ घिस जाए, या वो किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट जाए, किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाए, तो वो कार्टिलेज काम नहीं करती है, वो खत्म हो जाती है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, या किसी वजह से जोड़ों के किनारे हैं वो एक्सीडेंट में घायल हो जाए, किसी बीमारी में घायल हो जाए और वो खुरदरे हो जाए, तो जल्दी से कार्टिलेज को खत्म कर दे तो वो जोड़ी खत्म हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर जब वो उसको एंड स्टेज अर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों के दर्द को जब वो प्रारंभिक अवस्था में तो दवाओं से काम चल जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 या स्टेज 1 2 3 के अंदर तो काम चल जाता है, दवाओं से और चिकनाई के इंजेक्शन से, सूजन के इंजेक्शन से, एक्सरसाइज से, इनसे काम चल जाता है, लेकिन जो स्टेज 3B और स्टेज 4AB, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हर हालत में आपको जोड़ चेंज करना पड़ता है। जैसे कि किसी के हृदय के अंदर कोई परेशानी है, 1 RT ब्लॉक है तो काम चल जाता है, 2 RT ब्लॉक है तो काम चल जाता है, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से किडनी के अंदर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, मरीज डायलिसिस चलता रहता है, जब किडनी पूरी डैमेज हो जाती है जिसको एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, उसमें फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट इसी से है, तो जब जोड़ पूरा डैमेज हो जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं बॉडी के अंदर से और उसकी जगह नया प्लास्टिक और स्टील का बना हुआ है उसको हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन कहते हैं, जो प्लास्टिक आराम से 20-25-30 साल में घिसती है, उस तरह की प्लास्टिक होती है और नीचे क्रोमियम कोबाल्ट स्टील एंड स्टील का बना हुआ एक बेस होता है, उसके ऊपर उस जोड़ को चेंज कर देते हैं और एक जोड़ को चेंज करने में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है।
जी,
तो यदि हम दोनों घुटनों के जोड़ चेंज करें तो करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है और बिल्कुल एकदम नई जिंदगी हो जाती है। 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जोड़ों का दर्द पूरा गायब हो जाता है, टेढ़ी टांगें सीधी हो जाती हैं। ऐसा मान के चलिए जैसे कोई मोतियाबिंद का मरीज है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, उसका जो लेंस एकदम ओपेक हो जाता है, उसको कुछ दिखना बंद हो जाता है, उसको अपनी उंगलियां भी दिखाई देना बंद हो जाती हैं, तो जब उसका हम लेंस निकाल के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं उसके लिए नई दुनिया बिल्कुल नई आंखें हो जाती हैं। इसी तरह से जोड़ों को खराब जोड़ों को निकाल के नया जोड़ फिट करने के बाद एकदम बिल्कुल नया जैसा जोड़ हो जाता है और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे 20, 25, 30 साल की एज में थे, जबकि भले उम्र आपकी 70 और 80 साल हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस जोड़ को 60-65 साल की बात कराया जाए। लेकिन यदि बहुत ज्यादा जोड़ खराब हो गया तो उसको जल्दी कराए। खराब जिंदगी, दर्द वाली जिंदगी, दुख वाली जिंदगी जीने का कोई औचित्य नहीं है। जिंदगी एक बार मिली है और जिंदगी दर्द लेने के लिए नहीं है। आप हंसी खुशी की जिंदगी जिए और पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, ना तो आप पैसा लेके आए थे ना पैसा साथ लेके जाएंगे। तो यदि आपके पास पैसा है उस पैसे को अपने उपयोग में लाइए और जोड़ चेंज करा लीजिए, लेकिन जोड़ हमेशा एक अच्छे सेंटर पर कराना चाहिए क्योंकि यदि जोड़ में इन्फेक्शन होंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बड़े अच्छे मेजर्स होते हैं और बड़ी अच्छी सुविधाएँ होती हैं। छोटे हॉस्पिटल में, छोटे नर्सिंग होम के अंदर वो सब सुविधाएँ नहीं होती क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा इन्वॉल्व होता है। तो 0 इन्फेक्शन रेट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट हमेशा एक अच्छे सेंटर पर कराना चाहिए जो जोड़ों को करने में माहिर है, क्योंकि ये एक थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर है तो डॉक्टर का भी ट्रेन होना बड़ा जरूरी है और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का भी 0 बैक्टीरिया वाला होना बड़ा जरूरी है।
जी जी।
क्योंकि अगर आपने कितने भी अच्छे सर्जन से करा दें लेकिन यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा और आपको मरीज को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
जी जी। तो और जॉइंट्स की जो आप बात करें, जो आप रिप्लेस करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो इसमें जो आप रिप्लेस करके जॉइंट्स लगाते हैं जैसे आपने कहा प्लास्टिक और स्टील के होते हैं, तो इनकी लाइफ कितने समय तक की?
देखिए, तो आपने वही बात कर दी, मैंने मर्सिडीज या BMW कार खरीदी, आप मुझसे पूछ रही हैं कि इसकी लाइफ कितनी है। मैंने गाड़ी शोरूम से निकाली और सामने ट्रक में ठोंक दी क्योंकि मैं मोबाइल पे बात करूं या मैं दारू पी के गाड़ी चला रहा हूं तो खत्म हो जाएगी। तो जब जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है तो मरीज को ये कहा जाता है, भाई आप पहले तो नॉर्मल थे, 30 साल तक नॉर्मल थे, 40 तक नॉर्मल थे, आप भगवान ने आपकी उम्र तो 100 साल दी है और जोड़ आपने खराब कर लिया 50 साल में 60 साल के अंदर, तो ईश्वर तो बेवकूफ है नहीं, बेवकूफ तो आप ही, आपने कुछ ऐसी हरकत की है कि जोड़ को आपने आधे समय में खराब कर लिया। तो जिस वजह से खराब किया है उन वजहों को जिंदगी से प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि जब भगवान का दिया जोड़ 50 साल वाला 100 साल वाला आपने 50 साल में खराब कर दिया तो इस जोड़ की लाइफ तो 20-25 साल है। तो अगर आप इस जोड़ को भी उन्हीं हरकतों को करेंगे तो फिर जैसी सबसे बड़ी जो गलती है जोड़ खराब करने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है बढ़ा हुआ वजन। तो यदि आपका वजन आपकी लंबाई के अनुसार से ज्यादा है, विदेशों के अंदर तो एक सिस्टम लागू कर दिया है, वो 70 किलो से ज़्यादा किसी मरीज का जोड़ चेंज ही नहीं करते।
जी।
पहले अपना वजन 70 किलो लेके आए, महिलाओं के लिए 60 किलो और पुरुषों के लिए 70 किलो। पहले अपने वजन को 70 किलो करके लाइए पुरुषों में, 60 किलो करके लाइए महिलाओं के अंदर, उसके बाद ही जोड़ चेंज करेंगे। तो ओबेसिटी कंट्रोल प्रोग्राम में डाल देते हैं और दूसरा मांसपेशियों को मजबूत करके लाइए फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो वहाँ जो जोड़ चेंज किए जाते हैं वो जोड़ 25-25-30-30 साल तक चलते हैं। मैं एक बढ़िया इंसिडेंस बता सकता हूँ, सर जॉन शानले जिन्होंने सन 1963 के अंदर सबसे पहला जोड़ बनाया था दुनिया के अंदर, जो पूरी जब तक ये विश्व रहेगा तब तक सर जॉन शानले का नाम नहीं मिटाया जा सकता, कि उन्होंने दुनिया को दर्द रहे जीवन जीने के लिए एक नई टेक्निक दुनिया को दी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उन्हीं की देन है। उन्होंने जो सबसे पहला जोड़ किया था वो 35 साल चला, जबकि साइंस उतनी तरक्की में नहीं थी, उतनी बढ़िया प्लास्टिक नहीं थी, फर्स्ट जनरेशन की उनकी सीमेंटिंग टेक्निक थी, जिस सीमेंट से जोड़ फिक्स करते हैं, प्लास्टिक भी फर्स्ट जनरेशन की थी और जो स्टील भी फर्स्ट जनरेशन की थी। उस जोड़ को उन्होंने 35 साल तक चला दिया क्योंकि उन्होंने मरीज को अच्छी तरह से समझा दिया था इस जोड़ को लंबे समय तक कब तक चलाया जा सकता है। तो आजकल के ज़माने में जो 63 से तो ज़माना कम से कम 50 साल आगे गुजर चुके हैं, तो आजकल का जोड़ तो कम से कम 30-40 साल तो चलना ही चाहिए।
जी जी।
जिन कारणों की वजह से जोड़ चेंज करना पड़ा कृपया उन कारणों को हटा दें। ओबेसिटी में सबसे ज्यादा है और मांसपेशियों की ताकत मजबूती, अब मांसपेशियों की पावर क्या है, अगर ये दोनों ठीक रहें तीसरी एक और चीज़ है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो जोड़ खराब होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों की क्षणभंगुरता कहते हैं, उसको कंट्रोल कर लें, बेस स्ट्रॉन्ग कर लें, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग कर लें और वजन को घटा दें, तो रिप्लेस किया हुआ जोड़ कम से कम 50 साल चलेगा, ये मेरा मानना है।
जी जी,
तो ये बड़ा जरूरी है। तो आपका ये प्रश्न था, जोड़ कितना चलना है
जी,
तो इस पे डिपेंड करता है
जी, यानी उन कामों को बिल्कुल ना करें जिनकी वजह से आपके ओरिजिनल जोड़ जो थे वो खराब हो गए
जी,
थे।
बिल्कुल
उन कामों को अपनी लाइफ से बिल्कुल
उनसे निकाल दें। बल्कि मैं एक चीज और कहूंगा, उन कामों को निकाल दें तो जो वर्तमान जोड़ है वो भी बड़ी तेजी से रिपेयर होने लगता है।
जी जी,
तमाम पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक्सरे देखने के बाद और उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आवश्यकता थी, मैंने कहा भाई आप मांसपेशियां मजबूत करो, फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट कर दिया, आप वेट कम करो, डाइटिशियन को अपॉइंट कर दिया, लाइफ स्टाइल चेंज को अपॉइंट कर दिया। वो एक साल बाद मेरे पास बोले डॉक्टर साहब हम बड़ा शुक्रगुजार हैं आपके, और अब हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमारा जोड़ तो वैसे ही ठीक हो गया।
जी जी,
तो कहने का मतलब है कि आपका बढ़ा हुआ वजन एक बड़ी खतरनाक एक और चीज आजकल आई है, महिलाओं का वजन तो बढ़ता है भाई, मीनोपॉज बड़ा जल्दी हो जाता है, मीनोपॉज में मासिक महीने का बंद होना, वो आजकल 40-45 एज में बंद हो जाता है और उसके बाद ईस्ट्रोजन की कमी आ जाती है
जी,
तो तेजी से वजन बढ़ने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए एक बढ़िया सी चीज़ है सोयाबीन का प्रयोग, यदि सोयाबीन बहुत अच्छी मात्रा में लें और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, जिसकी एक गोली रोज देनी पड़ती है वो लेते रहें, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता बहुत सी महिलाओं ने बनती है
जी जी।
एक और चीज और मैंने पाई है कि एक जमाना था जबकि महिलाएं बैठ के खाना बनाती थी
जी,
अब 99% घरों के अंदर खड़ा होकर खाना बनाया जाता है, और मैंने अभी तक किसी की भी किचन में स्टूल नहीं पाया है, वो घंटों खड़े होकर खाना बनाती रहती हैं और फिर कहती है हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ आपको खाना खड़े होकर नहीं बनाता, उनकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब उनको बताना पड़ता है आपको सिर्फ 100 रुपये का स्टूल परचेज करना है और वो स्टूल किसी भी कीमत पर 1.5 फुट से नीचा नहीं होना चाहिए, 18 इंच से ऊंचा स्टूल पकड़े, 20 इंच का 22 इंच का ऊंचा स्टूल बाजार से लें, 200-300 रुपये में आ जाता है, उस स्टूल पर बैठ के खाना बनाएं। आप 10 घंटे खाना बनाएं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 1 घंटे बनाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कृपया खाना खड़े होकर नहीं बनाएं, स्टूल पर बैठ के बनाएं और डेली घुटनों की करीब करीब 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लें, तो किसी भी महिला को मैं समझता हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
जी। बिल्कुल, यानी कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर पर से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है
जी जी,
तो आपको थोड़े बहुत एहतियात बरतने हैं ताकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आप तक बिल्कुल ना पहुंचे
जी।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। फिलहाल बातें चल रही हैं कुछ खास आप ही की सेहत के बारे में, और आज हम बात करें हैं बोन्स के बारे में। बोन्स यानी हड्डियां जो वीक हो जाती हैं तो काफी हद तक आपकी जिंदगी भी रुक जाती है। हमारे साथ फिलहाल बहुत सी जानकारी शेयर करने के लिए स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष शल्य, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। डॉक्टर सुभाष, अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ
जी, पूछिए।
बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर गिर के हो गया या कोई एक्सीडेंट में हो गया, इस तरीके से फ्रैक्चर हो जाते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर फ्रैक्चर होने के बाद उस व्यक्ति की जो लाइफ है या फिर उसको कहीं उस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें वो ज्यादा नॉर्मल नहीं हो पाता, वो वीक रह जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जाए?
देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और हिंदुस्तान के अंदर तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, विदेशों में तो मैंने नहीं पाया इस तरह की ज़्यादा समस्या आती है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए या तो प्लास्टर लगाया जाता है
जी,
या अंदर हड्डी के अंदर रॉड लगाई जाती है, या उसमें एक प्लेट स्क्रू से कसी जाती है, 3 मुख्य तरीके हैं, या फिक्सेटर लगाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसी मरीज की आवश्यकता है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जैसी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। हड्डी जब टूट जाती है तो जुड़ने के अंदर उसको 1.5 महीने से लेकर के और 3 से लेकर के 6 महीने तक का टाइम लगता है, तो जल्दी से जल्दी हड्डी जो जुड़ती है वो 1.5 महीने में जुड़ती है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर हड्डी जुड़ने में कभी कभी 6 महीने का समय ले लेती है, क्योंकि उनमें हड्डियाँ बड़ी कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं, और कुछ मरीजों के अंदर तो हड्डियों को जोड़ने के लिए बोन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, जब हड्डियाँ नहीं जुड़ती उनमें खाद डालनी पड़ती है, तो शरीर के अंदर से ही हड्डी का चूरा गोले की हड्डी से लेकर के उसके अंदर डालना पड़ता है, एक और ऑपरेशन करना पड़ता है, या पहले ऑपरेशन के अंदर ही ये आशंका को माफ करके कि भाई हड्डी देर में जुड़ेगी तो कूले से हड्डी लेके चूरा डाल दे, इसको प्राइमरी बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। हड्डी जब वो टूटती है तो उसमें से ढेर सारा खून निकल जाता है, तो खून की कमी बॉडी में हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। हमारा खून का लेवल 12 से लेकर 16 ग्राम तक सामान्यतः होता है, और एक हड्डी टूटने के अंदर कभी कभी एक एक लीटर तक, दो दो लीटर तक खून निकल जाता है। यदि घाव वाला फ्रैक्चर है जिसको ओपन फ्रैक्चर कहते हैं तो बाहर निकल जाता है, यदि वो क्लोज फ्रैक्चर है जिसमें अंदर ही अंदर खून बॉडी के अंदर जमा हो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, तो उसके अंदर शरीर के अंदर लॉस हो जाता है, आपको नजर नहीं आता लेकिन खून तो लॉस हो गया, सर्कुलेशन से निकल गया, तो आपका हीमोग्लोबिन काउंट नीचे आ जाएगा। जब हीमोग्लोबिन काउंट नीचे आ जाएगा तो हड्डी जुड़ने में ज्यादा समय लगता है, और जितना ज्यादा समय हड्डी जुड़ने में लगेगा उतना ही ज्यादा वो मांसपेशियां, आप वहां मूवमेंट नहीं कर सकते तो मांसपेशियां जाम हो जाती हैं
जी।
और जब जाम हो जाती हैं तो मांसपेशियां, सपोज प्लास्टर में आपने किसी हड्डी को डाल दिया, किसी टांग को या जांघ को डाल दिया, बांह को डाल दिया, तो जिस मांसपेशी को आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, एक्शन में नहीं लाते हैं, तो मांसपेशी का जो वॉल्यूम है बल्क है वो धीमे धीमे कम होने लगता है, उसको डिसयूज एट्रोफी कहते हैं। तो जब फ्रैक्चर जुड़ जाता है उसके बाद जब आप मूवमेंट करते हैं तो एक तो जोड़ जाम हो जाता है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान के अंदर फिजियोथेरेपी का रिवाज ही नहीं है।
बिल्कुल,
यहाँ मरीज समझता है फिजियोथेरेपिस्ट पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, ये तो जरा सा हाथ पैर हिलवाएंगे हमारा और 100 से लेके 500 रुपया तक ले लेंगे, तो एक दो दिन जाता है उसके बाद वो ना घर पे करता है, घर पे उसके पास टाइम नहीं क्योंकि फ्रैक्चर के दौरान 2-3 महीने वैसे ही वो काम से बाहर रहा है, वो अपने काम पे जाने की सोचता है, फिजियोथेरेपी के लिए सभी नहीं होता। तो अल्टीमेटली इससे उसकी जो एक्टिविटी लेवल है और जो एफिशिएंसी है उस जोड़ की, उस प्रभावित बाहें या टांग की, वो 100% नहीं आने पाती है। एक मोटे से तौर पर मैंने ऐसा देखा है, जितने समय तक आपका जोड़ का संचालन नहीं हुआ है उससे लगभग दुगने समय तक आपको दिन में 1 से 2 घंटे डेली फिजियोथेरेपी करनी चाहिए
जी।
ऐसा करेंगे तो 100% वही पावर और उतना ही रेंज ऑफ मूवमेंट आ जाएगा जितना फ्रैक्चर होने से पहले था, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा एक और बड़ा एक पहलू है, इसमें दर्द होता है, जब फिजियोथेरेपी करते हैं तो दर्द होता है, और मरीज उस दर्द के कारण फिजियोथेरेपी नहीं करता है तो चाल पूरी नहीं आ पाती, और जब चाल पूरी नहीं आ पाएगी तो फिर उसका वो अंग पूरा सीधा भी नहीं हो पाएगा, जब सीधा नहीं हो पाएगा तो आप चाल के अंदर लंगड़ाहट रहेगी, काम करने में परेशानी होगी आपको। तो बड़ा ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ 1 घंटे के लिए जाएँ, और सिर्फ उसी को फिजियोथेरेपी नहीं मान के चले, घर पर भी आप आकर के प्रॉपर एक्सरसाइज करें जो उसके अंडर गाइडेंस दिए हैं। जैसे जो बच्चा टॉप करता है जिसके 90-100% मार्क्स आते हैं, वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ता है, स्कूल में टीचर से 4 घंटे गाइडेंस लेके आता है और घर पर आके 8-10 घंटे पढ़ता है। तो जितना ज़्यादा आप समय देंगे फिजियोथेरेपी के लिए उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट आएगा, बड़ा जरूरी है।
जी बिल्कुल है। डॉक्टर सुभाष जी, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं जो एक आम व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो बोन से जुड़ी हुई हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरीके से बोन्स की देखभाल करें और किस तरीके से अलग अलग परेशानियों का इलाज फिलहाल मेडिकल साइंस में उपलब्ध है, ये भी आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
जी, धन्यवाद।
तो फिलहाल बातें हो चुकी हैं आप ही की सेहत के बारे में, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।